राम राम हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बल्ला मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद्गीता यथारूप के 11वें अध्याय के हम दूसरे विभाग में संजय अर्जुन की दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं और ये विभाग 9 से 31 श्लोक तक चलेगा। और पहले भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया? पुरुष सुक्ता वाला। और जब योग्य हो गया तो काल रूप दिखाया। तो अब ये जो वर्णन चल रहा है अब काल रूप दिखाएंगे, फिर चतुर्भुज दिखाएंगे, फिर अपने वापस असली रूप में आएंगे। तो अब 23वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुद्रम बहुदंष्ट्र करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्थास्तथा अहम्। हे महाबाहो, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, हे महाबाहो, दृष्ट्वा रूपम महत्ते, इस महान रूप को देखकर, कैसा है महान रूप? बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत से मुख और बहुत से नेत्र हैं, और क्या है? बहु बाहु रूपादम, बहुत से बाहु हैं, बहुत सी जांगे हैं, बहुत से चरण हैं, पाद हैं, और क्या है? बहु उद्र बहु दंष्ट्र करालम, बहुत सारे उदर हैं, पेट हैं और भयानक दांत हैं। तो इससे हो क्या रहा है? लोका प्रवृत्थास तथा, सारे लोक इससे बहुत ज्यादा भयभीत और विचलित हो रहे हैं। तो ये भी काल रूप के अंतर्गत ही आता है, जिसमें भगवान के भयानक दांतों से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। तो तीनों लोग भगवान के इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये करालम, ये बड़ा भयानक रूप है, कराल रूप है, बड़े भयानक दांत हैं। और तथा हम जो है वो दूसरे श्लोक के साथ जुड़ा है, 24वां श्लोक, प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। नभा स्पर्शम दीपतम अनेक वर्णम व्यततानम दीपेत विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तंत्र आत्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं, दृष्ट्वा हि त्वं नभ स्पर्शम, आपका ये रूप आकाश को छू रहा है, स्वर्ग को छू रहा है, इतना बड़ा है ये रूप, के इस रूप का ऊपर का भाग वो आकाश को छू रहा है। दृष्ट्वा ही त्वम नभ स्पर्शन, नभ का मतलब आकाश को स्पर्श कर रहा है। दीप्तिम अनेक वर्णम, चारों ओर से नाना प्रकार के रंगों से चमक रहा है, दीपायमान हो रहा है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो ठीक है, रंग है, देखो बड़ा सुख लो, तो बड़ा रात हमने कल दिन बंधु जी का जन्मदिन था तारीख से, तो मैं फोन किया कहाँ है, बोला कुसुम सरोवर में है, बहुत अच्छी लाइटें लगी है, चमक रहा है। मैंने बोला फोटो निकालो भाई, तुम्हारे लिए लगाए हैं जन्मदिन की, और क्या, खुश हो जाओ। बड़ा केवल इतना नहीं है, और ये उसमें व्यात व्यात आनन, इतना राज, सिर्फ लाइटें चमक रही है तो ठीक है, आपका मुंह खुला हुआ है बड़ा ऐसे, आपका मुंह व्यताम आननम, आनन कहते हैं मुख को, आनन मुख को कहते हैं, मुख आपका बहुत बड़ा खुला हुआ है। बोला मुख खुला हुआ है तो क्या डरने की, बोलो केवल मुख नहीं खुला हुआ है, आपकी दीपित विशाल नेत्रम, बहुत बड़े आग उगलने वाली आपकी आंखों से आग उगली जा रही है, बड़ा भयानक है। इससे हो क्या रहा है, पहले अपने लिए कहता व्यथित अंतर आत्मा, मेरा मन भी व्यथित हो रहा है। वो पहले कौन सा रस आया था अर्जुन का, आश्चर्य, वो अब आ रहा है व्यथित हो रहा है, अब उसको भय लग रहा है। बोला व्यथित होता है तो अब मेरे साथ बैठे रथ में, चिंता मत करो। बोला कुछ नहीं दिखा रही है, धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु, हे विष्णु अब मुझे शांति का और संतुष्टि का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो अर्जुन के अंदर एक और भाव उत्पन्न हुआ। दो श्लोकों में अर्जुन अपनी दुखदायी स्थिति का वर्णन कर रहा है, एक श्लोक ये, एक आगे वाला श्लोक। और क्यों कर रहा है वर्णन, कि भगवान इस रूप को अब समापति करें तो अच्छा है, समाहर करें तो अच्छा है। मानसिक रूप से मैं बहुत चिंतित हूं, भयभीत हूं। तो ये दूसरा भाव अर्जुन का इस श्लोक में, कौन सा श्लोक है ये, 24वें अर्जुन को दूसरा भय, भयानक रस, ये भी रस है, ये भयानक रस है। तो ये मन से विचलित है और भयभीत है, और धृतम का मतलब संतुष्टि, शमम का मतलब शांति। हे विष्णु न मुझे शांति मिल रही है और न संतुष्टि, तो मैं असंतुष्ट हूँ, अशांत हूँ, इसका मतलब भयभीत और विचलित हूँ। कैसा रूप है, आकाश को छूने वाला, अंतरिक्ष को छू रहा है, और मुख बहुत बड़ा भयानक रूप से खुला हुआ है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन भयानक या भय वाले रस का यहां अनुभूति कर रहा है। काल रूप देखकर अर्जुन क्या कह रहा है, कौन सा रस, तो पहला रस कौन सा था, अद्भुत, कौन से श्लोक में था, 14 में अद्भुत रस का अनुभूति हुई है, और 24 में भयानक और भय, भयानक रस, भयानक रस का नाम है, देखो भयानक। तो ये उस रस का वर्णन है। अब हम 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं, आज इसको खाली करना होगा। दंश्रा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्रैव काला नलसनिभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दृष्ट्वा दंष्ट्रा कालम चैते मुखम, भगवान आपके मुख में भयानक कराल दांत देख कर, और क्या देख रहे हो, कालानल सनिभानी, ऐसी आग निकल रही है जैसे प्रलय की आग हो। कालानल सनिभानी, वो तो सनिभानी का अर्थ है प्रलय की आग, प्रलय की आग जैसा भयानक ज्वाला निकल रही है। तो कहीं से भागो, दिशा न जाना, अब दिशा कहाँ है ये भी पता नहीं लगता है, जाऊं कहाँ भाई, आग लगे तो किस तरफ जाऊं, सब जगह आग ही आग पड़ी है, कहां जाऊं, दिशा न जाने, न लभे च शर्म, और मुझे कोई शांति भी नहीं है, मैं बड़ा अशांत हूँ। शर्मा का मतलब है शांति, क्या लिखा है? आराम, आनंद, आनंद तो बहुत ऊपर का शब्द है, आराम भी नहीं है। हे देव देवा, हे जगतपति, और प्रसिद्ध शब्द का मतलब कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ, ये भय हो रहा है मुझे। तो ये आगे काल रूप के भय का वर्णन है, और इसी का तात्पर्य किसी ने नहीं लिखा है। सुख, सुख लिखा, सुख है वैसे, कंफर्ट, कंफर्ट, सुख, सुख, सुख है। 26-27 अमी चत्वाम धृष्टा धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सैव निपाल संगैः भीष्मो द्रोणसूत पुत्र सतथासो सहस्वमध्यैरपि योद्धमुखैः वक्त्राणि ते तव रामाणाविशन्ति दंष्ट्रा करालानि दशन्नान्तरेष्णो दंष्ट्रा करालानि भयङ्कानि केचिद्विलग्ना दशन्नान्तरेषु सन्दर्शन्ते चूर्णतैर उत्तम अंगै। चूर्णतै उत्तम अंगै का अर्थ क्या है? जो उत्तम अंग है वो चूर्ण हो रहा है, तो सर, सबके सरों को आपके मुख के दांत चूर्ण कर रहे हैं, चटनी बना रहे हैं। उत्तम अंग किसको कहते हैं? सर को, सर को, सर, सबके सर की चटनी बन रही है। किसके किसके? अमीच त्वाम धृतराष्ट्र पुत्राः, अमीच धृतराष्ट्र पुत्राः, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र 100 के 100। और कौन और है? सर्वे सह एव अवनी पाल संगई, सर्वे का मतलब सब, और सह एव अवनी पाल, उनके साथ कौन है? अवनी किसको कहते हैं? धरती को। अवनी पाल का मतलब राजा, राजा जैसे भूपाल, अवनी पाल, अवनी का मतलब धरती के राजा जो है। संगई बहुत सारे रंग, राजा भी, केवल धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नहीं, बहुत सारे उनके साथ राजा भी। बोला जाने दीजिए, बोला नहीं, भीषम द्रोण कर्ण, वो भीषम द्रोण, परंतु अर्जुन बोल रहा है ना, अर्जुन कर्ण को नाम कर्ण ना लेके सूत पुत्र ही लेगा, ये उनका द्वेष का भाव है। और भगवान जब कर्ण का नाम लेंगे तो कर्ण कहेंगे, सूत पुत्र नहीं कहेंगे। वो भी जा रहे हैं, बोला कोई बात नहीं, शत्रु वाले जा रहे हैं, आपको क्या चिंता है इसकी, मरने दो। बोला नहीं, केवल उनके नहीं, अब बोल रहा है तथा अस्मादिय अपि योद्ध मुखई सह, हमारे पक्ष के भी सब मान योद्धे उनके साथ चूरण हो रहे हैं, केवल उनके नहीं, हमारे भी सारे मुख्य मुख्य योद्धा जो है वो भी चूरण हो रहे हैं। तो भगवान कहां जा रहे हैं? तब रामाणा विशंति, तब रामाणा आपके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, तब आपके अंदर आरामाणा विशंति, कहां मेरे अंदर घुस रहे हैं? बोला कहां घुस रहे हैं? ते दंष्ट करालानी भयानकानी वक्त्राणी, आपका जो भयानक ये जो मुख है और इसके बहुत बड़े भयानक दांत है ना, इनके अंदर घुस रहे हैं। तो क्या हो गया उनको घुस रहे हैं? तो जाने दीजिए, बोलो नहीं, केचिद चूर्ण ही उत्तम अंगई, उन सब का सर चटनी बन रहा है। बोला चटनी बन के कहाँ जा रहा है? बोला विलग्ना दशन संदर्श्य अंतरेशु संदर्श्यंती, वो चटनी बन के आपके दांतों में चपके हुए हैं। इसका मतलब कितना भगवान का बड़ा मुंह होगा कि इन सारे योद्धाओं के सर के टुकड़े भगवान की दांतों में और नारियल के छिलके की तरह खाते हैं, चपके हुए हैं। ये अर्जुन को ये भय लग रहा है, बहुत बड़ा भय है। तो इसका अर्थ तो सबको समझ में आया। अर्जुन को भगवान ने एक शब्द कहा, और भी जो कुछ देखना है वो देख लो। तो वो जो और कुछ है उसका अर्थ ये है, आप मेरे इस विश्व रूप में आपकी विजय और शत्रु की पराजय इस युद्ध में भी देख लो। तो काल रूप में भगवान विशेष रूप से क्या दिखा रहे हैं? अर्जुन का एक जो संदेह था दूसरे अध्याय में, कौन विजयी होगा कौन पराजय होगा ये पता नहीं है, जो अर्जुन अनिर्णायक था ना, तो उसका निर्णय भगवान ने विश्व रूप में अर्जुन को उसकी विजय और कौरवों की पराजय को दिखाया। ये इस श्लोक का भाव है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और सारे और उसके साथ सारे राजा शल्व जरासंध आदि, जयद्रथ आदि और सूत पुत्र कर्ण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे जो कभी कहीं हारे नहीं मरे नहीं युद्ध में, भीष्म जैसे भी आपके मुख में चूर्ण हो रहे हैं। असौ जो शब्द है सूत पुत्र के साथ, असौ अर्जुन का कहना है कि उस सूत पुत्र ने सदा मेरे प्रति ईर्ष्या रखी है। असौ का मतलब ये जो दो शब्द है ना, असौ सूयते असूयते, सूयते का मतलब क्या है? ईर्ष्या करना, असूयते का मतलब ईर्ष्या नहीं करना। तो ये असौ असौ ये इसका अर्थ है, सूत पुत्र के साथ असौ लगाने का अर्थ है कर्ण सदा ही मेरे प्रति द्वेष भाव रखता है। अर्जुन जो कह रहे हैं तो बीच दोस्तों के लिए कुछ नहीं कहा है, विशेष कर्ण के लिए ये शब्द कहा है। केवल वो नहीं, हमारे भी मुख्य योद्धा जैसे दृष्टद्युमन, हमारा सेनापति भी की चटनी बन रही है। कोई नहीं, ना द्रुपद बचेगा और ना द्रुपद और मुख्य दो महाराज थे, महाराज द्रुपद और विराट राज, इन दोनों को द्रोणाचार्य ने मारा। शल्य शल्य तो विपक्ष में चला गया ना, कर्ण का सारथी बना और सेनापति बना। कर्ण के मरने के बाद सेनापति बना, एक आधे दिन के लिए शल्य सेनापति था, मामा। शल्य ने शल्य को मारा ही युधिष्ठिर ने, ये मामा को मारने की परंपरा कृष्ण से चल रही है। हाँ जी, सहोक्ति तो भगवान के दांतों में सब चपके। इसके वो प्रभुपाद ने तात्पर्य क्या लिखा है, पहले श्लोकों में जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन जो कुछ आपको देखना है, जिसका आपकी उच्च रुचि है वो देख लो, वही बात कर रहे हैं। तो अर्जुन अब विपक्ष के भीष्म द्रोण कर्ण आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को और अर्जुन अपनी सेना के महासैनिकों को भी का भी विनाश देख रहा है। प्रभुपाद ने सबका विनाश देख रहा है।
इसका इससे क्या संदेश मिलता है प्रभुपाद के, इससे क्या अनुमान मिलता है लगता है? ये सब जब मारे जाएंगे जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, तो अर्जुन विजयी होगा। और यहां यह भी बताया गया है भीष्म जो अजय है, अजय है और इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भी यहां कर्ण के साथ समाप्त हो जाएगा। और केवल शत्रु पक्ष के नहीं, अर्जुन के पक्ष के भी महारथी मारे जाएंगे 28। अब दो श्लोकों में विशेष एक भाव, यथा नदीनां बहवो अम्बो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोके वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभे अभिज्वलवन्ति। जैसे बरसात में नदियों का वेग बहुत तीव्र होता है ना, यथा नदीमां बहु अम्बु वेगा, अम्बु पानी, नदी का पानी जैसे बरसात में तेज, जैसे बाढ़ आए तो जैसे तेज जाता है ना, ऐसे कहाँ जाता है नदी का पानी? समुद्र में वा अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की तरफ जाता है। उसी प्रकार तथा तथा अमी नर लोक वीरा, उसी प्रकार इस जगत के सारे वीर भीषम द्रोण आदि कहाँ जा रहे हैं? तब अभिज्वलंती वक्त्राणी विशन्ति, आपके ज्वाला मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये किसके लिए है भाई? देखो नदी समुद्र की तरह जाए ये तो है स्वाभाविक, तो ये तो अपनी इच्छा से मरने जा रहे हैं लगता है कि ये तो वीर गति को प्राप्त होंगे ही। यहां दो उदाहरण दिए गए हैं दो श्लोक में, एक ये श्लोक एक आगे वाले श्लोक। एक उदाहरण क्या दिया है, एक जा रहे हैं बिना अपनी इच्छा के, जैसे नदी समुद्र में जाती है इच्छा नहीं होती, अपने आप जाती है स्वभाववश, जानते नहीं भाई क्यों जाती है, उसका स्वभाव है। और दूसरा जो उदाहरण है वो जानबूझ के जाते हैं, जैसे पतंग आग में जानबूझ के जाता है, वो कौन है? वो है असुर, जो तो भगवान को कर्ण आदि है वो मरने जा रहे हैं, और भीष्म आदि हैं ये तो स्वभावगत जा रहे हैं, जानते नहीं है क्या है वो, तो ऐसे जा रहे। तो दोनों का उदाहरण, दोनों में ये अंतर है, नदी समुन्द्र में स्वभाव से जाती है और पतंग अग्नि में स्वइच्छा से जाता है, जान कर जाता है। अब पतंग का वर्णन है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय स्मृध वेगा तथेव नासाय विशन्ति लोका त्वापि वक्त्राणि स्मृध वेगा। यथा पतंगा, जैसे पतंग, स्मृध वेगा बहुत तीव्र गति से, प्रदीप्तम ज्वलम विशन्ति प्रज्वलत अग्नि में प्रवेश करता है, क्या करने जाता है? नाशाय, अपना विनाश करने जाता है। उसी प्रकार तथेव लोका, उसी प्रकार ये सारे सामान्य लोक, त्वापि वक्त्राणि विशन्ति, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, स्मृद वेगाय बहुत तीव्र गति से क्या करने जा रहे हैं? नाशाय, अपना विनाश करने जा रहे हैं। ये किसके लिए है असल में? ये है असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो तो अपना विनाश करने ही जा रहे हैं, जैसे दुर्योधन और उसके सारे पक्ष के कर्ण आदि, और वो जो है उसका इसमें कोई तात्पर्य ज्यादा, दो ही बातें बताइए खास, क्या दो बातें बताइए? दो श्लोकों में, एक में स्वाभाविक बिना इच्छा के बिना जाने जा रहे हैं नदी की तरह, जैसे जैसे नदी बहती है ये स्वभाव है, तो जैसे भीष्म है द्रोण है वो अपनी मर्यादा में स्वभाव से आए हैं, कोई ऐसे उनका उद्देश्य ये नहीं है, परंतु उनको मालूम है परिणाम यही है। परंतु जो दूसरे हैं वो द्वेषी हैं पांडवों के, वो तो विशेष रूप से मरने के लिए ही आए हैं, तो वो पतंग उड़ते हैं। तो इसमें उदाहरण भगवान के मुख को पहले के लिए समुद्र और दूसरे के लिए अग्नि से, और पतंग जो है उसका उदाहरण है जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र कर्ण आदि वो मरने ही जा रहे हैं, और भीष्म द्रोण आदि हैं वो भी समुद्र में जा रहे हैं, इसका मतलब कैसे भी भगवान की इच्छा से वहाँ उनका भी समाप्ति होनी है। तो उदाहरण ये है। 30वां श्लोक, मरना है तो मरने तो, लेकिन आप मजा ले रहे हैं। श्लोक ऐसा है कि आप ले लिया से अग्रसमान समंता, लोकान स्मग्रान वंदनै ज्वलदभिः, लोकान स्मग्रान वंदनै ज्वलदभिः, तेजो भीरापूर्य जगत स्मग्रम, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो, ग्रस्यमानः, सबको निगल रहे हैं, लोकान समग्रान सारे लोकों को निगल रहे हैं, कहाँ समन्ता चारों ओर से, कैसे निगल रहे हो, ज्वलद भी वदनई आपके ज्वाला मुख से चारों ओर से सबको निगल रहे हो, और ले ले ऐसी, और उसको निगलने के बाद भी बाहर जबान निकाल के चांट रहे हो और कहाँ है खींच के लाओ, तो आप वो इसमें सुख ले रहे हो। हे विष्णु, तब उग्रह, तब उग्राह भाष आभाष प्रभाष, आपका जो उग्र तेज है, आपका जो उग्र तेज के किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, तेजो भीर आपूर्य जगत समग्रम, पूरे जगत को बहुत ही तपा रही है। श्री विष्णु आपके तेजोमयी किरणें दसों दिशाओं को जगत में तपा रही है। प्रतपंती, ऐसे लगता है कि सारे तप रहे हैं। पहले सारे सैनिकों का भगवान के मुख में प्रवेश का वर्णन किया, अब अर्जुन भगवान के अंदर से जो प्रकाश निकल के सब दिशाओं में सब दिशाओं को प्रतपत कर रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो आपके मुख में आया उन सबको आप निगल गए, और फिर आप जबान निकाल के अपने घोंटों को चाट रहे हैं, और खून लगा हुआ है उससे लगता है कि आप बहुत और निकलना चाहते हैं, और आपके विष्णु विग्रह से निकलने वाले जो तेज की किरणें हैं वो पूरे विश्व को तपा रही हैं, जो सहा नहीं जाता है, असहाय गर्मी हो रही है। अब आपसे कोई भाग नहीं सकता, कहीं कहाँ जाएगा, कहीं जाने की जगह नहीं है, कोई भाग नहीं सकता। अब ये इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक है। आख्या हिमोको मेको भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम,
नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।
आख्या ही में मुझे बताओ, हे कृष्ण मुझे बताओ। कहा भवान उग्र रूपो, कौन है आप इस उग्र रूप में, मुझे बताइए ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन है। नमोस्तुते, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे देव वर, हे देवों में पूजन्य, प्रसिद्ध, मेरे ऊपर कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। मैं जानना चाहता हूं भवंतम विज्ञानम इच्छामि, विज्ञातुम इच्छानमि, आपके विषय में मैं जानना चाहता हूं। हे आद्यम, हे आदि पुरुष, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपका उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता। तो अर्जुन कहते हैं मैं प्रार्थना करके जानना चाहता हूं कि ये आपका उग्र रूप आपने धारण क्यों किया है, कृपा करके हे देवों के पूजन्य आपके इस रूप का उद्देश्य बताइए, मैं नहीं जान पा रहा हूं। भगवान ने जैसे पहले विश्व रूप दिखाया और फिर काल रूप दिखाया, अर्जुन इस रूप के सत्य को जाना, अब इस रूप काल रूप के विषय में विशेष रूप से पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? भगवान के उद्देश्य को और इस रूप के कारण को ठीक तरह जानने के लिए कि क्यों भगवान ने ये रूप मुझे दिखाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। मैंने तो कौतूहल पूछा था कि आपने जो विभूतियां बताई हैं इसको आप अपने रूप में दिखाओ, लेकिन ये रूप क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा था कि आपके विश्व रूप का दर्शन कराओ, ये अर्जुन ने प्रार्थना तो अर्जुन ने की थी। यहां लिखा है तीसरे में क्या है देखो, क्या श्लोक का पहला शब्द क्या है, एवं एतत् तथा यथार्थ आत्मानं परमेश्वर दृष्टामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हाँ, तो ये यही तीसरे श्लोक का भाव है। दर्श्या में क्या लिखा है चौथे में, दर्श्यामास रूपम अव्ययम अविनाशी रूप को, यहाँ लिखा है कि आपके विश्व, तीन चार दोनों का समझो, यहाँ तीन लिखा है बलदेव विद्याभूषण ने। तो भगवान ने वो रूप दिखाया, परंतु भगवान में साथ साथ में बड़ा भयानक रूप भी दिखाया जो सब विनाश कर रहा था। तो अर्जुन इसके विषय में, अब वो तो अर्जुन ने पूछा था अपनी इच्छा थी, ये जो देखने में आया इसके बारे में अर्जुन कहता है ये क्या रूप है आपका, ये भयानक रूप क्या है। ये देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपा करो इस भयानक रूप को छुपा दो, समाप्त करो। आप आदि पुरुष हो, मैं जानना चाहता हूं आपने ये रूप धारण किया है क्या दिखाने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है। या हमारा ये विभाग पूरा होता है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर नहीं है। और तीसरे विभाग में है मैं काल हूं और आप मेरे निमित्त मात्र बनो, ये भगवान का उत्तर है। अर्जुन ने जब पूछा ना आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है, तो भगवान ने कहा मैं हूं काल और मेरा उद्देश्य है तुम बनो निमित्त मात्र। ये है 32, 33, 34, केवल तीन श्लोक। श्री भगवान वाच, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो
लोकान् समाहर्तुमिहि प्रवृत्ते ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः।
आप कौन हो मैं जानना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं। क्या करने आए हैं? लोकक्षय कृत, सारे लोकों का क्षय विनाश करने आया हूं। प्रवृद्ध, मेरी शक्ति का विस्तार है काल। मैं यहां लोकान समाहर्तुम ई है प्रवृत्ति ही, सारे ही जो यहां योद्धा खड़े हैं, मानव खड़े हैं, उन सबको नाश करने के लिए आया हूं। और फिर तो अर्जुन तो भयभीत हो गया, सबको नाश करूंगा। बोल नहीं, रिते भी त्वम, आप पांडवों को छोड़कर, रिते का मतलब इनको छोड़कर, त्वम आप पांडवों को छोड़कर, ये अवस्थता प्रतिनिकेशु योद्धा, बाकी जितने ही शेष, जितने ही आप पांडवों को छोड़ के यहां दोनों सेनाओं में खड़े हैं ना, ये सब के सब इनका इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इनका वजूद ही नाश हो जाएगा, इनका नाम निशान भी नहीं बचेगा, ये इसका भाव है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आप कौन हैं जो जगत को नाश कर रहे हैं, सर्वत्र आप विस्तृत हैं। प्रवृद्ध, कठोपनिषद में ऐसा एक श्लोक है भगवान के लिए, यस्य ब्रह्मच क्षत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्यो यस्य उपश्चेनयनम् का इत्था वेद यत्र सह। ये है क्या अपने पास लिखा है प्रभुपाल? ठीक है, वो भगवान को जानता है जिनका भोजन है ब्राह्मण और क्षत्रिय और मृत्यु उनकी चटनी है। ये कठोपनिषद का सुबह इन श्लोकों में मेरे को काल रूप में मेरा वर्णन हुआ है। आप जानना चाहते हैं मेरा उद्देश्य क्या है? यह विशेष समय पे इन सबको मैं निगल जाऊंगा, दुर्योधन और ये सारे समाप्त हो जाएंगे। आप युधिष्ठिर और आप पांडवों को छोड़ के कुछ लोगों को यहां कोई नहीं बचेगा भविष्य में। अब बलदेव विद्याभूषण एक और इस श्लोक का भाव बता रहे हैं कि अर्जुन ने जब कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, तो भगवान इस दृश्य से और इस उत्तर से कहना चाहते हैं अगर आप नहीं भी लड़ोगे तो ये तो मरेंगे ही, आपके न लड़ने से ये राज नहीं करेंगे, इनकी तो ये तो मेरा भोजन और चटनी के साथ तैयार है, ये तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुम काल के रूप में, मैंने इनकी आयु हर ली है, ये मर तो तभी गए थे जब द्रौपदी का अपमान किया था, ये तो शव घूम रहे थे, अब इनको समाप्त करना है। ये दोनों तरफ की सेना में भीष्म सहित सभी समाप्त हो जाएंगे। आप अगर युद्ध नहीं करेंगे तो आप धर्म का रास्ता छोड़ेंगे, मरेंगे तो ये, लेकिन आपको लोग कहेंगे कि धर्म का रास्ता छोड़ गया। ये भगवान इस श्लोक से अर्जुन को उसके युद्ध न करने को गलत बता रहे हैं कि ये धर्म के विरुद्ध है। श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण को अर्जुन अपना मित्र मानता है, परम पुरुष भगवान मानता है, परंतु ये बड़ा भयानक कृष्ण का काल रूप देखकर भयभीत हो गया है। भयभीत क्या, विचलित हो गया है। तो भगवान के उद्देश्य के विषय में कि ये सर्वनाश क्यों कर रहे हैं पूछना चाह रहा है। वेदों में ये लिखा है कि सत्य वो है जो सबका नाश करता है, और ये श्लोक लिखा है फिर कठ उपनिषद का, यस्य ब्रह्मचक्षत्रम च उभे भवतः ओदनः, दोनों भगवान का ओदन बनते हैं भोजन, मृत्योः यस्य उपसचेनम स इथा वेद यत्र सः, ब्राह्मण क्षेत्रीय और सब भगवान उन सबको भोजन की तरह निगल जाते हैं, और भगवान अपने काल रूप में सबको निगलते हैं, और उसमें लिखा है चटनी सास। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, पांडवों को छोड़कर सभी इस युद्ध में खड़े हुए अपना प्राण गंवाएंगे। अब प्रभुपाद जी दूसरे अर्थ को लिखते हैं, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, अच्छा है कि अर्जुन लड़े, नहीं लड़ेगा तो भी ये मरेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे बड़ा दुख है ये मरेंगे। तो भगवान कहते तुम नहीं लड़ो तब भी ये मरने वाले हैं, ये भगवान की योजना है। अगर अर्जुन नहीं मारेगा दूसरे तरीके से मरेंगे, मरना तो है, और इनके लिए रास्ता निकाल के रखा है। पर के वास्तव में वो पहले ही मरे हुए थे, भगवान की इच्छा से काल उनका विनाश कर देगा, ये प्रकृति का नियम है। आगे कह रहे हैं,
ये दुर्गुण को अपमान किया था उस समय को मरने का निश्चय, सब लोग तो अपमान में था नहीं, जैसे विराट जी था नहीं, कुछ लोग ही थे,
कुछ थे कुछ नहीं थे, जो नहीं थे उन्होंने उनका पक्ष लिया, इसलिए मरने के लिए उनका भी नाम आ गया लिस्ट में। एक बहुत लंबा बड़ा दो वॉल्यूम में पुस्तक लिखा है, वो 18 दिन महाभारत युद्ध के, और उस रथ के ऊपर अर्जुन का कपि ध्वज के बजाय गरुड़ ध्वज का फोटो लगाया कि ये सारी योजना कृष्ण की थी। उसमें ये प्रश्न पूछे गए कि ये क्यों मारे गए, इसने क्या किया था, ये क्यों मारा गया, इसने क्या किया था, तो भगवान ने उन सब के लिए उत्तर दिया है कि ये इसलिए मारा गया, ये इसलिए मारा गया, इन सब का टाइम पूरा हो गया था, ये सब प्रश्न पूछा गया है, एक एक के लिए प्रश्न पूछा गया है। बहुत लंबा चौड़ा दो वॉल्यूम में पुस्तक है, एक श्री वैष्णव ने लिखा है महाभारत के आधार के ऊपर, 18 डेज ऑफ वार, मैं पढ़ा था इसको एक बार, बहुत अच्छा पुस्तक है। अभी मैं क्यों किसको मारा गया सबका नाम का कारण नहीं बता, मेरे को याद है, परंतु सबके पीछे उद्देश्य है। ये आपको बताया था ना हमने, एक राजा लड़ाई में लड़ा नहीं था, काशी राज, बताया था ना आपको, वो आया था बोला कि देखो अब भाइयों की लड़ाई है, मैं लड़ूं मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोला सभी इस युद्ध में लड़े थे, केवल एक तो रुक्मणी का भाई रुक्मी, उसको पांडवों को कहा मेरे को ले लो, अहंकार से बोलो नहीं चाहिए, और कौरवों ने नहीं लिया, वो नहीं लड़ा था इस युद्ध में, एक बलराम जी इस युद्ध में नहीं थे, वो तो कहा था मैं भाइयों का युद्ध में, तो भाई कृष्ण के पक्ष में हूँ और दुर्योधन मेरा शिष्य है, अब मैं इस युद्ध को देखूंगा नहीं। देखिए काशी राज के लिए कहा कि वो आया का मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, पर इतनी बड़ी सेना आपने इकट्ठी की है, इनके भोजन का क्या करोगे, भाई कोई तो ये व्यवस्था भी करे ना दोनों के भोजन का व्यवस्था, बोला ये सेवा मेरी सेना के साथ, मैं ये सेवा करूंगा। तो वो रोज का भोजन जितना बनाता था वो पूरे का पूरा हो जाता था, पहले मानो के पहले दिन के भोजन के लिए जरा युद्ध से पहले 17 अक्षोणी उनकी और 11 उनकी, 7 उनकी, 18 अक्षोणी को भोजन बनाया, दूसरे दिन 11 मानो के 12 का बनाया, फिर 10 का बनाया, अंत में एक ने किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा था, लगता था कि इतने मर जाएंगे इतने का भोजन बनाऊंगा। बोला मैं मूंगफली रोज कृष्ण को रात को जाके देता था, वो जितनी खाते थे उतनी मैं समझता कि मर गया और जितनी बचते थे उतने का भोजन बनाता था कि इतना नहीं रहेंगे, मैंने हिसाब लगा लिया था कि मूंगफली इनको शाम को खाते थे मैं रख देता था, वापसी में गिनता था, तो जो खाई वो गए, जो रहे बच्चे उतने का ही भोजन बनाता, तो एक भी चपाटी खराब नहीं हुई, सब पूरी हो गई। ये काशीराज के लिए लिखते हैं कि वो उसमें सेवा ये करता था। तो आइए 33वें श्लोक को पढ़ते हैं। तस्मात् त्वमुतिष्ठ यजो यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं स्मृतम्। मयि एवेति निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवसव्यसाचम्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए उठो और यश को प्राप्त करो अर्जुन। जित्वा शत्रुम, अपने शत्रुओं को जीतो। भुंक्ष्य राज्यम समृद्धम, और समृद्धिशाली राज का भोग करो। मया ते एते निहता, इन सबको मैंने मार दिया है। पूर्वम एव, पहले ही मार दिया है। निमित मात्र भव सव्य साचन, हे वीर आप केवल निमित मात्र बनो। एक बार जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया था इस्कान का, तब वियतनाम की लड़ाई होती थी तो जबरदस्ती सबको सेना में ले जाते थे पकड़ के, तो वो आके भक्त बनते थे कि प्रभुपाद लेटर लिख दे के देंगे कि ये धर्मी, ये किसी धर्म के सेवा कर रहे हैं तो हमको सेना में नहीं ले जाएंगे। उनको सेना में जाने से डर लगता था, जो सेना में नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे यहाँ कहीं भर्ती हो रही थी, अपने यहाँ आए कि देखा कोई हमारे रस सिंधु गोपाल जैसा कहते हैं सेना में भर्ती करेंगे, पकड़ के बोला रिक्रूट यू इन आर्मी। ये बोला ये क्या मेरा काम थोड़ी है। सो इसको ले गए, बोला इसकी आई तो टेस्ट करें, दूर से देखेगा कि नहीं गोली कैसे मारेगा। तो इसके ले जाके डॉक्टर ने पूछा, देखो दीवार पे वो कागज में क्या लिखा है। बोला दीवार कहाँ है कागज दीवार ही नहीं दिख रही है। बोला अंधे को कहाँ ले जाएंगे। बोला दूसरा एक टेस्ट और है। बोला वो लाल बत्ती को हाथ लगा के, सब जो खड़े हैं जिनको हमको भर्ती करना है लाल बत्ती को हाथ लगा के आओ। सब आए, ये 2 दिन के बाद आया। बोला क्यों नहीं आया। बोला वो ट्रक की ब्रेक की लाइट थी, लाल लाइट ब्रेक की थी वो, मैं गया तब तक ट्रक चली गई, मैं तो ढूंढ के उसको मुश्किल से अभी। बोला वो लाल बत्ती ये तो मैं नजर, उसको तो भागना था। हमने पूछा, दूसरे दिन हमारे कमरे में आया, बोला तुम्हारी सेना की भर्ती का बोला क्या कहते हो। मैंने रात स्वप्न देखा, इन ए ड्रीम मैंने देखा सामने सैनिक खड़ा है, मैंने उसका एक हाथ काट दिया तलवार से, पांव काट दिया। मैंने बोला गर्दन पे क्यों नहीं चलाया। बोला वो पहले ही कटा हुआ था गर्दन पहले ही कटा हुआ था तो मरे हुए को मार रहा था और वो भी स्वप्न में। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं ये पहले ही मरे हैं, अब तुम स्वप्न में चलाते जाओ बाण, नाम तुम्हारा होगा, मार मैंने दिया है तुम्हारा है, तुम्हें ये निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्र का मतलब काम मैंने किया है। पागल खाने में नहीं, पागल खाने में पागलों की थोड़ी सी कहा जाए कि सुख सुविधा के लिए स्विमिंग पूल बनाया, कि चलो इनको थोड़ा स्विमिंग करेंगे, तो एक पागल उसमें गिरा और दूसरे पागल ने उसको अंदर से निकाल लिया, बच गया। तो जो डॉक्टर था पागल खाने का, उसने कहा ये तो भाई पागल नहीं हो सकता है, डूबने वाले को बचा लिया, इसको तो कल निकाल देते हैं पागल खाने से। सुबह उसको बुलाया कि तुमने अच्छा काम कल किया, उस डूबते हुए को बचाया, हम सोच रहे हैं कि तुमको पागल खाने से निकालें। बोला मैंने उसको बचाया, वो इतना गीला हो गया था, मैंने उसके गले में रस्सी बांध के और पंखे में लटका दिया है, सूख रहा है वो। उसके गले में रस्सी बांधी है और पंखे के में लटका है, पंखा चलाया, वो सूख रहा है। और इसने बोला बच्चे को भी मार दिया, मार के सुखा रहा है उसको। तो ये हम समझते हैं कभी अच्छा काम करते हैं लेकिन अच्छे काम, हम समझते हैं अच्छा आदमी है लेकिन उसके काम का पता नहीं लगता है कि क्या कर रहा है। ये तो ऐसे ही मेरे को ऐसे याद पता नहीं कहाँ से आ गया। तो निमित्त मात्र बनो, उसके मृत्यु का निमित्त मात्र, पानी में नहीं डूबा, पंखे में डूबा दिया। तो भगवान ने कहा बचेगा नहीं। एक जगन्नाथ की, जगन्नाथ के नेत्र उत्सव के समय कथा बताते हैं कि पहले दिन जब जगन्नाथ दर्शन देते हैं सारे देवता मिलने आते हैं, तो यमराज थोड़ा देर से आया तो देखा कि एक चिड़िया बैठी है गरुड़ स्तंभ के पास। यमराज ने टेढ़ी आँख से देखा, चिड़िया डर गई कि यमराज ने टेढ़ी आँख से देखा तो मरना पड़ेगा। यमराज जगन्नाथ जी के पास गया, चिड़िया ने गरुड़ को कहा मेरे को भगाओ यहाँ से, मार देगा यमराज। गरुड़ उसको ले गया हिमालय में एक जाके गुफा में छोड़ के आया। बाहर आते हुए यमराज देखा तो ये गरुड़ जी तो पसीना पसीना हो गए, कहाँ गए थे पक्षीराज? बोला महाराज क्या कहे, वो मेरी प्रजा है, उस चिड़िया को डर लग रहा था, आपने देखा था, मैं उठा के उसको हिमालय के गुफा में छोड़ के आया। यमराज कहता है यही तो मैं शिकायत जगन्नाथ से कर रहा था कि कैसे जगत चलाते हो, मैं जब ऑफिस से निकला इस चिड़िया को हिमालय की गुफा में बिल्ले के द्वारा खा के मरना था और मैंने इसको यहाँ देखा, मैं परेशान हो गया कि वहाँ पहुँचेगी कैसे, मुझे क्या पता कि आपके द्वारा वहाँ पहुँचाया जाएगा और अब बिल्ले ने उसको खाया और मर गई। तो ये भगवान के नियम जो हैं वो पक्के हैं। यहाँ अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि आप निमित्त मात्र बनो, क्योंकि मैंने सबको मार दिया इसलिए उठो, आप अपने धर्म का पालन करो और आपकी विजय होगी और आपका यश होगा। ओ भीषम कर्ण, ये जो अजय जो जो देवताओं से भी जीते नहीं जाते हैं, अर्जुन आप इन सबको हरा दोगे आसानी से और आपको बहुत बड़ा यश मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही मैंने मार दिए। कब मारे हैं? बलदेव विद्याभूषण लिखे हैं द्रुपति के अपमान के समय, केशों को जिन्होंने देखा और चुप रहे उन सब का प्राण समाप्त होकर चुका। अब सव्यसाचन का वर्णन लिख रहे हैं कि दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। प्रभुपाद लिखते हैं सव्यसाचन का अर्थ वो है जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है बड़ी दक्षता के साथ। निमित्त मात्र बनो, और इस श्लोक का असल में हम सब के लिए व्यक्तिगत अप्लीकेशन है, हम सब के लिए ये श्लोक हमारे सब के लिए प्रेरणा सूत्र है। महाप्रभु ने कहा है कि हर गली हर गांव में हरे कृष्ण महामंत्र गाया जाएगा। अब सिर्फ हमको निमित्त मात्र बनना है प्रचार करने का, काम तो पहले उन्होंने कर लिया। तो एक तो हमारे लिए ये प्रेरणा सूत्र श्लोक है कि महाप्रभु ने काम तो कर दिया है, हमको जाके सिर्फ प्रचार करना है। और इसका प्रमाण प्रभुपाद जी है, ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ भक्त बन गए, इसका मतलब महाप्रभु की बात को सत्य करने के लिए हमें निमित्त मात्र बनना है। दूसरी इससे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा हमको क्या लेनी है, निमित्त मात्र जो बने वो श्रेय स्वामी को दे, स्वयं श्रेय न ले, चाहे हम कितनी सफलता के साथ बड़ा मंदिर निर्माण करें, परंतु उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए। भगवान भक्त की महिमा बढ़ाना चाहता है और भक्त भगवान को श्रेय देते हैं। अहंकार नहीं करो, निमित्त मात्र बनो। प्रभुपाद ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सारा संसार भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहा है। मूर्ख जो है, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं कि ये जो दुनिया अपने आप चल रही है, कोई इसके पीछे चलाने वाला नहीं है, ये कोई, वो समझते हैं ये कोई ऐसे दुर्घटना हो गई है दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी है तथाकथित, वो कहते ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो जब कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा, मेरे विचार में ऐसा है, समझना मूर्ख पहले नंबर पर है। भगवान के विचार से चल रही है, तेरे विचार का क्या महत्व है? भगवान का ही विशेष योजना है और इस भौतिक जगत में उसी योजना के अनुसार सारे कार्य चल रहा है। और भगवान की योजना क्या है? कि ये भौतिक जगत बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का एक अवसर है, मौका है। और जब तक वो प्रभुता की भावना रखेंगे, जगत के अंदर स्वामित्व, कर्ता और भोक्ता मानेंगे, स्वामी स्वामी बनना चाहेंगे, तब तक बद्ध जीवन ही रहेगा। और जो भगवान की योजना को समझेगा और कृष्ण भावना का अनुशीलन करेगा, वो अति बुद्धिमान माना जाएगा। ये जगत की सृष्टि और प्रलय भगवान के ही आदेश से होता है, भगवान के निर्देश से होता है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी भगवान का ही योजना था। अर्जुन कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, परंतु फिर भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध में भाग लिया और वो सुखी हो गया। इसलिए कोई कृष्ण भावना भावित हो और अपना जीवन भगवान की दिव्य सेवा में लगाए तो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब भगवान अपने मुख से किन किन को, जिनका भय है, उनको मारने की बात कर रहे हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नयानपि योद्धवीरान् मया हतां त्वं जहि महाविवस्थिता युधस्य जेता शिरणे सपत्ना त्वं जहि, मारो सबको, समाप्त करो। त्वं जहि द्रोण भीष्म जयद्रथ। अब देखो, द्रोण का नाम ले, भीष्म का ले, वो तो ठीक है। अब द्रोण तो उनके गुरु हैं और भीष्म अजय है, पर जयद्रथ का नाम भी लिया है, क्योंकि ये एक दिन इसको वरदान शंकर जी ने दिया था कि अर्जुन को छोड़ के चार पांडवों को हराएगा, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है, उसमें भगवान की बिना सहायता के संभव नहीं। कर्णम तथा नयाम अपि योद्ध वीरान, कर्ण और दूसरे महावीर जितने भी है, मया हत्ता, उन सबको मैंने मार दिया है। मां व्यथिता, आप व्यथित मत हुई, चिंता मत कीजिए कि इसको कैसे मारा जाएगा, क्योंकि ये तो अजय है। युधस्य, लड़ो, जेतासी और जीतो, सपत्नान रणे, इस रणभूमि में अपने शत्रुओं को जीतो, मैंने सबको मार दिया है। अब इसको लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण के दूसरे अध्याय में। अर्जुन ने कहा था कि कथा पता नहीं किसका विजय होगा, तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि विजय तुम्हारा होगा। वहां कह जयम वा अजय वा, वो जो श्लोक है, यदा वा जयम यदि वा न जय हो, ये जो पूछा था कृष्ण, अब कह रहे हैं इन सबको मैंने मार दिया है, आप बस बाण चलाओ। भयभीत मत हो, जैसे मत सोचो कि इनके पास दिव्य अस्त्र है, कोई बात नहीं, ये पहले ही मारे हुए हैं, इसको मारने में आपको कौन सा प्रयास करना पड़ेगा। आप इनको जीतो युद्ध भूमि में और विजय प्राप्त करो। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिखे, पहली लाइन देखो प्रभुपाद जी क्या लिखा है। योजना भगवान की होती है, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि सफलता का सेहरा अपने भक्त के ऊपर बांधते हैं, यश देते हैं भक्त को, काम करते हैं कृष्ण, ये है पहले लाइन का अर्थ। लेकिन कौन से भक्त को यश देते हैं? जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, भगवान की इच्छा और आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा उसको यश मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हम कृष्ण भावना में भगवान श्री कृष्ण के इच्छा को और भाव को गुरुदेव के माध्यम से समझें और उसके अनुसार अपना कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण की योजनाओं को समझना चाहिए भगवान की कृपा से, और भगवान का और भगवान के भक्त की योजना में कोई अंतर नहीं होता है। और अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों के योजना के अनुसार काम कार्य करेंगे तो विजयी बनेंगे संसार के संघर्ष में। यह हमारा ये विभाग भी पूरा हुआ। अब चौथा विभाग है अर्जुन की प्रार्थनाएं, ये है 35 से 46 तक, तो 5 और 6, 11 श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करते हैं। भीष्म पितामह की प्रार्थना भी भागवत में 11 श्लोकों में है, भीष्म स्तुति 11 श्लोकों की है मेरे विचार में, अर्जुन की स्तुति भी यहां 11 श्लोकों की है ऐसे लग रहा है। जी
ध्रुव महाराज का 12 श्लोक,
ध्रुव महाराज 12 में, अच्छा है,
11
है ना, ये 11 है, ये तो 11 है, गिन लिए वो 11, भीष्म वाले भी 11 हैं भागवत में मेरे विचार में। अब संजय बोल रहे हैं, एक श्लोक पढ़ लेते हैं। संजय वाचा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य च केशवस्य कृतांजलेरवेपमान कृति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृत्स्नम् सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कह रहे हैं एतम केशवस्य वचनम श्रुत्वा, भगवान श्री केशव के वचनों को सुनकर, केशव का अर्थ करो का ब्रह्मा ईश शंकर व उन दोनों का स्वामी अथवा उनके दोनों द्वारा जो पूजित है, ये एक अर्थ है केशव का। और कोई अर्थ केशव, केशी उकेशी निशूदन, जिसके बहुत केश सुंदर है, सुंदर केशों वाला केशव। केशव के वचन सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कृतांजलि कृति। अब देखो अर्जुन का हमने नाम बताया था, कृति यहां है, जिसको जिसका मुकुट इंद्र का दिया हुआ था आधे आसन पे बिठाकर। नमस्कृत्वा भूय एवः, बार बार वो भगवान को नमस्कार कर रहा था, भीत और भयभीत भी था। और फिर कृष्ण को बहुत ही गदगद वाणी में ऐसे कहने लगा। तो ये 3 श्लोकों में भगवान की योजना को सुनकर अर्जुन गदगद वाणी से हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा। प्रभुपाद जी से तात्पर्य में अर्जुन के जो आश्चर्य रस है उसका वर्णन कर रहे हैं, और भयभीत हुआ है और फिर अपने मित्र को समझ के उसको प्रार्थना कर रहे हैं, ये आश्चर्य के कारण। अब अर्जुन की प्रार्थना यहाँ से शुरू हो रही है, 36 से। अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहरश्यत अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश, ऋषिकेश का करो पदछेद, ऋषि का ईशर, ऋषि का इंद्रियां, ईशर स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी, हे ऋषिकेश सही है, स्थान है, जगत प्रहर्षित, सारा जगत प्रसन्न है, सारा जगत आनंदमय है, बिल्कुल ठीक है। अनुरज्यते च, सब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तव प्रकृतिया, सब आपकी प्रकृति, आपकी प्रकर्षण रूपेण कीर्तिया, आपकी महिमा गा रहे हैं, ये आपका महिमामय रूप का महिमा गा रहे हैं, ये भी ठीक है। राक्षस भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं, रक्षासी भीतानी दिशो द्रवंती, और ये भी ठीक है। जो सिद्ध है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, जो भक्त है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वे च सिद्ध संगा नमस्यन्ति, अचानक अर्जुन ने ये अनुभव किया कि भगवान का आकर्षक रूप भी है और भयानक रूप भी है, दोनों बातें देखी, आकर्षक भी देखा भयानक भी देखा, कि भगवान कुछ लोगों के लिए आकर्षण का कारण है और कुछ लोगों के लिए भगवान भय का कारण है, भयानक है। और प्रार्थना में यही अर्जुन वर्णन कर रहा है। स्थाने का अर्थ है सही किया, ये बहुत सही है, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल उपयुक्त है, ये बिल्कुल ठीक ठीक है। ऋषिकेश, आप इंद्रियों को अपने भक्तों की अपनी सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, और आप भक्तों की इंद्रियों को बेमुख करने वाले हैं, क्यों? आप ऋषिकेश हैं ना, भक्तों की इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाते हैं और अभक्तों की इंद्रियों को अपनी सेवा से बेमुख कर देते हैं। सारा जगत प्रसन्न है, प्रहर्ष्यति, क्यों? प्रकीर्त्या, संकीर्तन कर रहे हैं, आपके गुणगान कर रहे हैं, और सब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, अनुरज्यते। चक्रवर्ती पात्र कहते हैं ये सही है, बिल्कुल ठीक है, उचित है, क्योंकि सारा जगत आपके आपकी महिमा गा रहा है। राक्षस असुर दानव पिशाच ये जो सारे हैं ये भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं, ये राक्षसी के अंदर ये सब आ गए, ये भी ठीक है कि वो आपसे द्वेष करके दूर भाग रहे हैं, ये भी उचित है। जो भक्ति के द्वारा आपके रक्षक है सिद्ध संगा, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको आदर दे रहे हैं, ये भी ठीक है क्योंकि आपके भक्त हैं। चक्रवर्ती पाद एक बात लिख रहे हैं कि इस श्लोक को लोग राक्षसों से रक्षा के लिए पाठ करते हैं, क्योंकि भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जो निर्गुण भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ श्लोकों का उपयोग रोज जप करते हैं लोग, एक एक श्लोक का, जैसे कोई राक्षसों से पीड़ित है तो इस श्लोक का पाठ करते हैं, ऐसे कोई भगवान का अनुभव करना चाहता है तो अर्जुन की पहला प्रार्थना का श्लोक है, सातवां श्लोक दूसरे अध्याय का, कार्पण्य दोषुपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समूढचेता यत् श्रेयस् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं साधिमान् त्वं। इसका रोज पाठ करते हैं इस भाव से कि भगवान हमको, हम उनके शरण लेते हैं, हमको शिक्षा दे अंदर से या प्रेरणा दे, ऐसे इसका पाठ करते हैं। कुछ लोग अनन्यास चिंतयन्तो माम का पाठ करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें, हमारी भक्ति की और हमें प्राप्त हो। कुछ तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम, भगवान बुद्धि योग दिए हम भगवान को प्राप्त करें, तो इन श्लोकों का भी कुछ लोग पाठ करते हैं। तो ये चक्रवर्ती पाद ने वो भाव लिखा, कभी आपने सुना है, करते हैं। कितने साल हो गए, मैं समझता हूँ 2003 की बात होगी मेरे ख्याल में, 18-19 साल हो गए। ये तीन श्लोक, ये जो हमने अभी आपको बात, तीन श्लोक का हम मानो के एक एक माला जितना पाठ करते हैं, पर वो इतना तीखा जाता है कि आज तक भगवान ने सुना नहीं है लेकिन ये मैं देखा था उस समय, मेरे को अच्छे लगे ये तीनों श्लोक रोज पाठ करने के लिए। तो ये चक्रवर्ती पाद ने ऐसे भाव लिखा है, ऐसे मैंने कहीं देखा था किसी आचार्य के इन श्लोकों का भाव। और निश्चित रूप से ये मंत्र है, असल में श्लोक नहीं है, मंत्र है, ऐसे लिखा है भगवद गीता माला मंत्रस्य, ये मंत्रों की माला है, इसके सारे मंत्र ही है, ये जप करने वाले मंत्र हैं। एक समय था मैं पूरे 18 अध्याय का रोज पाठ करता था, अब तो भूल, बहुत दिन हुए छूट गया, बहुत साल पहले की बात है, मैंने इसका शुरू किया था, पहले 6 अध्याय, फिर 12, फिर 18, फिर रोज 18 अध्याय करता था और एक घंटे से के अंदर हो जाता था श्लोकों का, उससे भी जल्दी हो जाता था, ऐसे बहुत तेज होता था, फिर भी वो छूट गया। लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये गीता के श्लोकों के पाठ का भी अपना एक प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु श्री प्रभुपाद का कहना है कि कोई श्लोक याद करने से बड़ा भक्त नहीं बनता है, जो भक्ति करेगा वही भक्त बनेगा, परंतु ये प्रभुपाद स्वयं को गीता के सारे श्लोकों को कहाँ किस वक्त कैसे उपयोग में लाना है इसमें बहुत दक्षता थी। प्रभुपाद जी के जो साथ रहने वाले उनके सचिव सेवक थे, वो कहते हैं प्रभुपाद जी को गीता को इधर से उधर से सब जगह कहाँ कौन सा श्लोक किधर, आप कहीं भी गीता भागवत पढ़ें चाहे तो गीता का श्लोक जरूर अंदर होगा, कब कहाँ कैसे बोलना है किसी जगह पे, इसमें बहुत दक्ष थे। तो ये अभ्यास करना अच्छा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान से अर्जुन ने युद्ध के परिणाम का सुना तो प्रबुद्ध हो गए, भगवान के महान भक्त और मित्र के नाते भगवान को कहने लगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब अति अच्छा है, उचित है, उत्तम है। अब अर्जुन क्या लिख रहा है, ऋषिकेश की परिभाषा है कि अपने भक्तों का भगवान श्री कृष्ण सेवा के वस्तुओं का रक्षक है और असुरों का नाशक है। इसका मतलब भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, इसको ऐसे समझें, ये भगवान का उद्देश्य है। ये दोनों अच्छे हैं, ये दोनों भी उचित है। अर्जुन ने ऐसे समझा कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतरिक्ष में हो रहा है, देवता सिद्ध और बुद्धिमान जितने भी ऊपर के लोकों वाले हैं वो इस युद्ध को देख रहे हैं, और कृष्ण, क्योंकि कृष्ण यहाँ हैं इसलिए सब देख रहे हैं। और अर्जुन ने यह भी देखा विश्वरूप में देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और जो असुर और नास्तिक हैं वो भयभीत हो रहे हैं, वो ये है वो प्रशंसा सुन नहीं सकते, वो द्वेषी भाग रहे हैं और अपने स्वाभाविक भय के कारण भगवान के इस भयानक विनाशक रूप को देखकर वो सब दिशाओं में भाग रहे हैं। अर्जुन भगवान की भक्तों के साथ व्यवहार और असुरों के साथ व्यवहार की सराहना कर रहे हैं। भक्त भगवान की महिमा गाते हैं क्योंकि वो समझते हैं जो कुछ भगवान करते हैं सभी उचित और अच्छा है। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं, कल 37 से, कल तो नहीं, अब सोमवार को आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ 2 क्लासों और में ये पूरा हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट वीक में हम 12वां अध्याय शुरू कर ही देंगे। जुलाई के दूसरे, अगस्त के दूसरे सप्ताह में हमारे 12 अध्याय पूरे हो जाएंगे, तब 15 दिन आप तैयारी करो या 10 दिन तैयारी करो, जन्माष्टमी से पहले या बाद में आप परीक्षा की तैयारी करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?